नमस्कार श्रोताओ, कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पुराने नियम में से यिर्मयाह नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं। हमें विश्वास है कि इस पुस्तक से आपको आध्यात्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
तेरे बिन ये नैया मेरी डोले है बीच भवर में, तेरे बिन ये नैया मेरी डोले है बीच भवर में। यसुआ यसुआ अब आ भी जा, खोया हूँ घोर नगर में। तेरे बिन ये नैया मेरी डोले है बीच भवर में, तेरे बिन ये नैया मेरी डोले है बीच भवर में। यसुआ यसुआ अब आ भी जा, खोया हूँ घोर नगर में। तेरे बिन ये नैया मेरी डोले है बीच भवर में, तेरे बिन ये नैया मेरी डोले है बीच भवर में। चलने वाले पानी पे चलने वाले, तेरे भेद अजीब निराले, अब हाथ पकड़ के बचा ले। जीवन के कठिन सफर में तेरे बिन तेरे बिन तेरे बिन तेरे बिन तेरे बिन ये नैया मेरी डोले है बीच भवर में, तेरे बिन ये नैया मेरी डोले है बीच भवर में। यशुआ यशुआ अब आ भी जा, खोया हूँ घोर नगर में। तेरे बिन ये नैया मेरी डोले है बीच भवर में, तेरे बिन ये नैया मेरी डोले।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हम इन दिनों बाइबल में से यिर्मयाह की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं। मेरे प्रियो, आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगे। हमारे प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके जीवित वचन के लिए, जिसके द्वारा से आप हमसे बातचीत करते हैं, आप हमें सिखाते हैं, समझाते हैं। पिताजी, जब आज हम आपके वचन में से सीखते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें। उनके जीवन के हर एक जरूरतों को आप जानते हैं, आप उसे पूरा करें। और विशेष करके हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए है जो बीमार हैं, निराश हैं, परेशान हैं, चिंताओं में और तनाव में हैं। आप उन्हें अपनी शांति, चंगाई और छुटकारा प्रदान करें। आज के वचन पर अपनी आशीष दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हम यिर्मयाह की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं, आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और यिर्मयाह की पुस्तक 21 अध्याय के 8 पद को पढ़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, इस प्रजा के लोगों से कह कि यहोवा यूं कहता है, देखो मैं तुम्हारे सामने जीवन का मार्ग और मृत्यु का मार्ग भी बताता हूं। आज परमेश्वर आपसे ठीक यही कहता है, प्रभु यीशु में उसके उद्धार के प्रावधान के विषय में। परमेश्वर कहता है कि उसने आपके पापों का दंड चुकाने के लिए अपने पुत्र प्रभु यीशु को आपके लिए मरने को भेज दिया, वह फिर जी उठा कि आपको धार्मिकता प्राप्त हो। यदि आपको उद्धार पाना है तो आपको उसमें होना है। पवित्र आत्मा के बपतिस्मे द्वारा आप उसमें हो सकते हैं। जब आप प्रभु यीशु में आपका उद्धारकर्ता होने का विश्वास ले आए, आप परमेश्वर की संतान बन जाएंगे। परमेश्वर कहता है कि यह मेरा मार्ग है जिसे मैंने तेरे लिए खोला है, तू इसे ग्रहण करे या त्याग दे, मैंने तेरे समक्ष जीवन और मृत्यु दोनों रख दी है। परमेश्वर ने ऐसा ही किया है। वह आंखों में आंसू लिए विनती करता है और हम सब के लिए उसने मार्ग दिया है। प्रेरितों के काम 4 अध्याय उसके 12 पद में कहता है कि आकाश के नीचे पृथ्वी पर मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। जी हाँ, उसने कहा है कि सिर्फ यीशु के द्वारा ही हम उद्धार प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि उसने हमारे लिए अर्थात हम मनुष्यों के लिए अपना जान दिया है। यहूदा वासियों के समक्ष 2 बातें थी, नगर में रहकर मरें या बेबीलोन के राजा को आत्मसमर्पण करके जीवित रहें। यर्मिया के पुस्तक 21 अध्याय उसके 9 और 10 पद में लिखा है, जो कोई इस नगर में रहे वह तलवार महंगी और मरी से मरेगा, परंतु जो कोई निकलकर उन कसदियों के पास जो तुमको घेर रहे हैं भाग जाए वह जीवित रहेगा और उसका प्राण बचेगा, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि मैं इस नगर की ओर अपना मुख भलाई के लिए नहीं वरन बुराई ही के लिए किया है। यह बेबीलोन के राजा के वश में पड़ जाएगा और वह इसको फुकवा देगा। सिद्दिकिया ने नहीं माना। वह एक दुर्बल व्यक्तित्व और एक बुरा राजा था। वह परमेश्वर की ओर नहीं फिरा। उसने सोचा होगा परमेश्वर ने यहोयाकीन के समय इस नगर को नष्ट नहीं होने दिया, वह भी तो मेरे समान ही बुरा था, तो फिर मेरे समय में भी ऐसा क्यों होगा। मेरे मित्रों, अब हम देखते हैं कि यहोयाकीम को दंड है। मेरे विचार में अध्याय 22 परमेश्वर के वचन की सबसे कठोर दंड की भविष्यवाणी है। कैन पर परमेश्वर के श्राप और यहूदा के लिए प्रभु यीशु के वचनों से भी अधिक कठोर। यह भयावह तो है, परंतु परमेश्वर के वचन की महानतम भविष्यवाणियों में से एक है। इससे पूर्व कि हम कोनिया या यहोयाकीन के विषय में परमेश्वर के दंड का अवलोकन करें, उसके पिता यहोयाकीन के दंड का उल्लेख आता है। वह एक दुष्ट राजा था, परंतु उसके राज्य काल में समृद्धि थी। धनवान अधिक धनवान बन रहे थे और गरीब पांवों तले रौंदा जा रहा था। यह बड़ी रोचक बात है कि परमेश्वर के वचन में गरीबों के लिए बहुत कुछ कहा गया है। पुराने नियम का समय हो या नए नियम का समय, परमेश्वर उन पर बहुत ध्यान देता है और इसी कारण हम इसे अनदेखा नहीं कर सकते हैं। यहोयाकीम के विषय में परमेश्वर का संदेश, आइए पढ़ें यर्मिया की पुस्तक 22 अध्याय उसका 13 पद। लिखा है, उस पर हाय जो अपने घर को अधर्म से और अपनी उपरौठी कोठरियों को अन्याय से बनवाता है, जो अपने पड़ोसी से बेगारी में काम कराता है और उसकी मजदूरी नहीं देता। मनुष्य गलत तरीकों से धन कमा रहा है और गरीबों को कम मजदूरी दी जा रही थी। मेरे प्रियो, आज भी हम ऐसा ही करते हैं। यर्मिया की पुस्तक 22 अध्याय उसके 14 और 15 पद में आगे लिखा है, वह कहता है, मैं अपने लिए लंबा चौड़ा घर और हवादार ऊपरी कोठरी बना लूंगा, और वह खिड़कियां बनाकर उन्हें देवदार की लकड़ी से पाट लेता है और सिंदूर से रंग देता है। तू जो देवदार की लकड़ी का अभिलाषी है, क्या इस रीति से तेरा राज्य स्थिर रहेगा? देख, तेरा पिता न्याय और धर्म के काम करता था और वह खाता पीता और सुख से भी रहता था। तेरा पिता अर्थात योशियाह, जिसके विषय में वह कहता है। मेरे मित्रों, हम अपने अध्ययन में यहूदा के राजाओं, उनके साथ प्रजा, वरन संपूर्ण देश के भविष्य के बारे में परमेश्वर का वचन यर्मिया के मुख से सुन रहे हैं। पद 16 और 17 में वह योशियाह की प्रशंसा करते हुए उसका उदाहरण दे रहा है। तो आइए हम पढ़ें यर्मिया की पुस्तक 22 अध्याय उसके 16 और 17 पद में लिखा है, वह इस कारण सुख से रहता था क्योंकि वह दीन और दरिद्र लोगों का न्याय चुकाता था। क्या यही मेरा ज्ञान रखना नहीं है? यहोवा की यही वाणी है। परंतु तू केवल अपना ही लाभ देखता है और निर्दोष की हत्या करने और अंधेर और उपद्रव करने में अपना मन और दृष्टि लगाता है। योशियाह दीन और दरिद्र लोगों का न्याय चुकाता था, परंतु यहोयाकीम के राज्यकाल में धनवान मनुष्य अधिक धनवान बनते जा रहे थे। वे भ्रष्टाचारी थे और गरीब अधिक और अधिक गरीब होते जा रहे थे। परमेश्वर को इस विषय में बहुत कुछ कहना था। यर्मिया उस सच्चाई की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता है जो धनवान धन संचय में लगे हुए थे। वे मजदूरों की मजदूरी को लूट रहे थे, वे गरीबों को पांव तले रौंद रहे थे, अपने घमंड और हठ में विशाल भवन बनवाकर ऐसे रहते थे जैसे परमेश्वर उनके कुकर्मों पर ध्यान नहीं देता है कि उन्होंने कैसे धन एकत्र किया है। नए नियम में याकूब की पत्री में याकूब कहता है 5 अध्याय उसके 1-3 पद में, हे धनवानों सुन तो लो, तुम अपने आने वाले क्लेशों पर चिल्ला चिल्ला कर रो, तुम्हारा धन बिगड़ गया है और तुम्हारे वस्त्रों को कीड़े खा गए हैं, तुम्हारे सोने चांदी में काई लग गई है और वह काई तुम पर गवाही देगी और आग के समान तुम्हारा मांस खा जाएगी, तुमने अंतिम युग में धन बटोरा है। परमेश्वर दो कारणों से धनवानों को दोषी ठहराता है, पहला उनके धन संचय करने का तरीका और दूसरा धन के उपयोग का तरीका। मेरे मित्रों, क्या आपने देखा कि धनवान मनुष्य के लिए हर बात में अपना ही दृष्टिकोण है? मैं देखता हूं कि कुछ लोग करोड़पतियों से भी अधिक कर चुकाते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि आप सोचेंगे कि वे बहुत करोड़पति हैं। कर के नियम धनवानों का पक्ष लेते हैं। राजनेता भी धनवानों के ही लाभ की बातें करते हैं क्योंकि वे उनके प्रचार में अंश दान देते हैं। धनवान ऐसे लोगों को ही आर्थिक सहयोग देते हैं। परमेश्वर के काम के लिए उनसे पैसा नहीं निकलता है। वे परमेश्वर के वचन के प्रसारण के लिए आर्थिक सहयोग नहीं देते हैं। परमेश्वर सबको देखता है। वह देखता है कि कब धनवान गरीबों को लूटकर धन संचय कर रहा है और वह देखता है कि वे कब धन का गलत रीति से उपयोग कर रहे हैं, अर्थात अपने निवास बनाने के लिए, महल बनाने के लिए। मेरे प्रियो, स्पष्ट कहूं तो मनुष्य गरीबी में निर्वाह कर रहा हो तो हमें बड़े बड़े घरों में रहना पाप सा लगता है। मैं नहीं मानता कि एक मसीही जन को ऐसा करना चाहिए। धनवान मसीही जनों से सहायता पाने वाले गरीबों की संख्या कम नहीं है। मेरे विचार में मसीही संस्थाओं को भी सुविधाजनक ऐश आराम करने वाले मकानों में रहने की आवश्यकता नहीं है। मैं यह भी कहता हूं कि धर्म धनवानों का ही सेवक है। मैंने कई बार प्रचारकों के मुंह से सुना है कि उनकी कलीसिया में 1 या 2 करोड़पति हैं। मैं जानना चाहता हूं कि ये करोड़पति परमेश्वर के वचन के प्रसारण में कैसा योगदान दे रहे हैं। मैं एक ऐसे मनुष्य के साथ फुटबॉल खेलने के लिए जाया करता था जो कहा जाता है कि वह करोड़पति है। फिर किसी ने मुझसे कहा कि वह हमारे रेडियो प्रसारण में सहायता करना चाहता है। मैंने उसे अपने रेडियो कार्यक्रम और आवश्यकताओं के बारे में बताया। उसमें रुचि उत्पन्न हुई। उसने मुझे विश्वास दिलाया कि वह रेडियो प्रसारण सुनता है। क्या आप जानना चाहेंगे कि उसने हमारे रेडियो कार्यक्रम में कितना योगदान दिया? 1 पैसा भी नहीं। मैं इस विलक्षण उदाहरण को चेतावनी के स्वरूप में सुना रहा हूँ। मैं तो करोड़ों रुपया छोड़कर मरना नहीं चाहता कि परमेश्वर को लेखा दूं कि मैंने अपने पैसों का क्या किया। इसका अर्थ यह नहीं कि परमेश्वर हमें जो देता है हम उसका आनंद न उठाएं। यदि वह हमें सुख चैन से रखता है तो हम उसका आनंद क्यों ना लें। परंतु यदि वह आपको धन देता है तो वह उसकी महिमा के निमित्त उसके उपयोग का लेखा आपसे लेगा। वह दीन और दरिद्र लोगों का न्याय चुकाता है। क्या यही मेरा ज्ञान रखना नहीं है? परमेश्वर कहता है कि वह इन गरीबों की भी बहुत चिंता करता है। परमेश्वर का अनुयायी यदि गरीब लोगों की, दरिद्र लोगों की चिंता न करे तो ऐसा असंभव है। क्या आप ऐसे दो मनुष्य वर्ग जानते हैं जिन्हें सुसमाचार सुनाना कठिन है? सबसे अधिक धनवान मनुष्य और सबसे अधिक गरीब मनुष्य। परमेश्वर इसमें संतुलन बनाना चाहता है क्योंकि वह चाहता है कि वे सुसमाचार सुनकर उद्धार पाएं। परमेश्वर चाहता है कि परम धनवान गरीबों को अर्थात दरिद्रों की सहायता करे। उसकी चिंता का विषय है कि दोनों वर्ग परमेश्वर का वचन ग्रहण करें। मेरे मित्रों, यदि संसार में जघन्य धनवानों और अत्यधिक गरीबों में संघर्ष न होता तो साम्यवाद का उदय भी कभी नहीं होता। इसी भेद का तो परमेश्वर कहता है कि वह दंड देगा। आइए हम देखेंगे कोन्याह का दंड। अब हम कोन्याह का कठोर एवं भयानक दंड को पढ़ेंगे। यिर्मयाह की पुस्तक 22 अध्याय उसके 24 और 25 पद में लिखा है, यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध चाहे यहोयाकीम का पुत्र यहूदा का राजा कोन्याह मेरे दाहिने हाथ की अंगूठी भी होता तो भी मैं उसे उतार फेंकता। मैं तुझे तेरे प्राण के खोजियों के हाथ और जिनसे तू डरता है उनके अर्थात बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर और कसदियों के हाथ में कर दूंगा। कोन्याह ही का नाम यहोयाकीम था। परमेश्वर उसे कोन्याह क्यों कहता है? उसका नाम वास्तव में जकोन्याह था। ज का अर्थ है यहोवा। परमेश्वर कहता है कि उसका नाम इस दुष्ट के साथ न जुड़े। परमेश्वर की दृष्टि में उसका स्थान ऐसा था कि यदि वह परमेश्वर के दाहिने हाथ की अंगूठी भी होता तो वह उसे उतार फेंकता। कितना कठोर शब्द है। यिर्मयाह की पुस्तक 22 अध्याय उसके 28 से 30 पद में लिखा है, क्या यह पुरुष कोन्याह तुच्छ और टूटा हुआ बर्तन है? क्या यह निकम्मा बर्तन है? फिर वह वंश समेत अनजाने देश में क्यों निकाल कर फेंक दिया जाएगा? हे पृथ्वी, पृथ्वी, हे पृथ्वी, यहोवा का वचन सुन। यहोवा यूं कहता है, इस पुरुष को निर्वंश लिखो। उसका जीवन काल कुशल से ना बीतेगा और ना उसके वंश में से कोई भाग्यवान होकर दाऊद की गद्दी पर विराजमान या यहूदियों पर प्रभुता करने वाला होगा। परमेश्वर संपूर्ण पृथ्वी को गवाह बनाकर कहता है कि कोन्याह के वंशज यहूदा की या दाऊद की राजगद्दी पर कभी नहीं बैठेंगे। यही एक कारण है कि यूसुफ कोन्याह का वंशज होने के कारण यीशु का पिता होने के योग्य नहीं था, क्योंकि यूसुफ के द्वारा कोन्याह का वंशज यीशु सिंहासन का अधिकारी ना होगा। इसका अर्थ क्या यह हुआ कि दाऊद का सिंहासन तब ही से खाली पड़ा था? यिर्मयाह की पुस्तक 33 अध्याय के 17 पद की भविष्यवाणी को आप सुने। यहोवा यूं कहता है, दाऊद के कुल में इसराइल के घराने की गद्दी पर विराजने वाले सदैव बने रहेंगे। दाऊद के सिंहासन बैठने वाला अवश्य होगा परंतु कोन्याह के वंश से नहीं। यिर्मयाह की पुस्तक 36 अध्याय के 30 पद में लिखा है, यहोवा यहूदा के राजा यहोयाकीम के विषय में यूं कहता है, उसका कोई वंश दाऊद की गद्दी पर विराजमान न रहेगा और उसका शव ऐसा फेंक दिया जाएगा कि दिन को धूप में और रात को पाले में पड़ा रहेगा। मैं आपको स्मरण कराना चाहता हूं कि यहोयाकीम कोन्याह का पिता था। परमेश्वर ने उस वंश को समाप्त कर दिया। यीशु की वंशावली में विशेष बात यह है कि यीशु की वंशावली दो तरफा है, जिसका कारण भी है। मत्ती के अध्याय 1 की वंशावली यूसुफ की ओर से है, दाऊद से सुलेमान और कन्याह और यूसुफ तक। यूसुफ की वंशावली यीशु को सिंहासन का वैधानिक अधिकारी बताती है, परंतु यूसुफ वास्तव में यीशु का पिता नहीं था, अतः यीशु उस वंशावली में नहीं था। दूसरी वंशावली लूका रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसके 23 से 38 में दी गई है, जो मरियम की वंशावली है। यह वंशावली राजा सुलेमान की अपेक्षा दाऊद के पुत्र नातान की है, जिसे परमेश्वर ने शापित नहीं ठहराया था। यीशु का जन्म कुंवारी मरियम से हुआ था, जिसके अनुसार वह दाऊद के सिंहासन का अनुवांशिक उत्तराधिकारी बन गया था। मुझे यह संसार का एक आश्चर्य सा बात लगता है। जी हाँ, यही कारण है कि परमेश्वर पृथ्वी को गवाह बनाकर कहता है, हे पृथ्वी, हे पृथ्वी, हे पृथ्वी, यहोवा का वचन सुन। वह कहना चाहता था कि पृथ्वी देखे कि उसने इस रीति से काम किया है। परमेश्वर की योजना को बदला नहीं जा सकता है। वह जिसे चाहे दंड दे सकता है, फिर भी वह अपनी प्रतिज्ञा पूरी करता है कि मसीह दाऊद के वंश से आएगा। मेरे मित्रों, यहाँ पर अध्याय 22 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और अध्याय 23 से देखेंगे, जिसका विषय है अंधियारे दिन में चमकता प्रकाश और 2 टोकरे अंजीर का दृष्टांत। प्रत्येक बादल में प्रकाश की किरण होती है। पिछले अध्याय के बादलों में भी प्रकाश की किरण थी। इतना अंधकार नहीं छाया था कि भविष्यद्वक्ता सुरंग के दूसरे छोर तक प्रकाश ना देख पाता। अध्याय 22, जिसमें कन्या के कठोर दंड की भविष्यवाणी है, उसके बाद सूर्योदय होता है, परंतु अभी 2 पदों बाद सूर्य दिखाई देगा। तो आइए हम पढ़ें यर्मिया की पुस्तक 23 अध्याय, उसका 1 पद। लिखा है, उन चरवाहों पर हाय जो मेरे चराई की भेड़ बकरियों को तितर बितर करते और उनका नाश करते हैं, यहोवा यह कहता है। ये चरवाहे राजा और राजनीति के अगुए हैं, शासक और नियम निर्धारित करने वाले लोग हैं। परमेश्वर कहता है, उन चरवाहों पर हाय। तब आगे लिखा है यर्मिया के पुस्तक 23 अध्याय के 2 पद में, इसलिए इस्राएल का परमेश्वर यहोवा अपनी प्रजा के चरवाहों से यूं कहता है, तुमने मेरी भेड़ बकरियों की सुधि नहीं ली, वरन उनको तितर बितर किया और जबरन निकाल दिया है। इस कारण यहोवा की यह वाणी है कि मैं तुम्हारे बुरे कामों का दंड दूंगा। परमेश्वर ने कहा वह दंड देगा, तो उसने दंड दिया। अब सूर्योदय होता है। आइए पढ़ें यर्मिया की पुस्तक 23 अध्याय उसके 3 और 4 पद में लिखा है, तब मेरी भेड़ बकरियां जो बची हैं, उनको मैं उन सब देशों में से जिनमें मैंने उन्हें जबरन भेज दिया है, स्वयं ही उन्हें लौटा लाकर उन्हीं की भेड़शाला में इकट्ठा करूंगा और वे फिर फूले और फलेंगी। मैं उनके लिए ऐसे चरवाहे नियुक्त करूंगा जो उन्हें चराएंगे, और तब वे न तो फिर डरेंगी, न विस्मित होंगी और न उनमें से कोई खो जाएगी। यहोवा की यही वाणी है। परमेश्वर कहता है कि वह दिन आता है जब मैं सत्ता हाथ में लूंगा और उस दिन कंगाल और दरिद्रों की सुधि ली जाएगी। यह इस युग के अंत में कलीसिया के उठाए जाने के बाद यहूदियों के स्वदेश लौटने के विषय है। उस समय उन्होंने जिस राजा को स्वीकार नहीं किया था, वह उन पर विश्वास योग्य चरवाहे शासक नियुक्त करेगा। वह प्रशासन आज के सांसारिक प्रशासन से सर्वथा भिन्न होगा। हम यर्मिया के पुस्तक 23 अध्याय उसके 5 पद में पढ़ते हैं, यहोवा की यह भी वाणी है, देख ऐसे दिन आते हैं जब मैं दाऊद के कुल में एक धर्मी अंकुर उगाऊंगा और वह राजा बनकर बुद्धि से राज्य करेगा और अपने देश में न्याय और धर्म से प्रभुता करेगा। दाऊद के वंश से एक राजा आएगा। राजा कन्याह यद्यपि दाऊद के वंश का था, वह त्यागा गया और उसका वंश समाप्त किया गया। परमेश्वर की योजना को कोई नष्ट नहीं कर सकता है, चाहे कोई सोचे कि वह कर सकता है। परमेश्वर जानता है कि वह क्या करेगा, जी हाँ, हम जानते हैं कि नए नियम के वृतांत के अनुसार नातान के वंश से एक कुंवारी मरियम से दाऊद का पुत्र आया, मसीह वरन राजा। जब यीशु ने स्वयं को संसार पर प्रकट किया तब उसने कहा, मत्ती रचि सुसमाचार 4 अध्याय उसके 17 पद में, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। अब राजा बिना तो राज्य नहीं हो सकता ना। अतः यीशु के कहने का अर्थ था कि तुम्हारा राजा आ गया है, परंतु उन्होंने उसे ग्रहण नहीं किया। उसने कहा कि एक दिन यह राजा अवश्य आएगा और अपने राज्य की स्थापना करेगा। यर्मिया की पुस्तक 23 अध्याय के 6 पद में लिखा है, उसके दिनों में यहूदी लोग बचे रहेंगे और इसराइली लोग निडर बसे रहेंगे, और यहोवा उसका नाम यहोवा हमारी धार्मिकता रखेगा। मेरे प्रियो, क्या आपने ऐसा राजनीति का नारा सुना है? मैंने तो कभी किसी प्रत्याशी से ऐसी बातें नहीं सुनी है कि वह धर्मी होगा और सरकार के लिए परमेश्वर की योजना एवं कार्यक्रम पूरा करेगा। इसको छोड़ वे अन्य सब दावे करते हैं, क्योंकि ऐसा दावा पूरा करना उनके वश में नहीं है। प्रभु यीशु के राज्य में धार्मिकता का राज्य होगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर जो कुछ भी योजना में रखता है उसे पूरा करता है, और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु उसी दाऊद के वंश से पैदा हुआ, अर्थात राजा के रूप में उसे वंशावली में से होकर के आया। मेरे प्रियो, यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त हो रहा है, और मैं आशा करता हूँ कि इस अध्ययन को आप निरंतर सुनेंगे और अगले अध्ययन में इनकी और भी आशीष की बातों को सुनेंगे और अपने जीवन में ग्रहण करेंगे। तो आइए आज हम यहाँ से विदा लेते हैं। अगले अध्ययन तक अपने आप को प्रभु की निकटता में बनाए रहें। इस बात को जानें कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, आपके जीवन के प्रति उसकी योजना है। प्रभु आप सबको आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। श्रोताओ, इस कार्यक्रम को आप हमारे वेबसाइट radio882.com पर भी सुन सकते हैं। इस वेबसाइट radio882.com के बारे में अपने मित्रों को भी सूचित कर दें। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
तेरे क्रूस की छाओ में अब से, तेरे क्रूस उसकी छाँव में अब से मुझे मिलना अपने रब से, तूने प्यार किया ऐसा सब से, बच जाए पाप डगर में, तेरे बिन तेरे बिन तेरे बिन तेरे बिन तेरे बिन ये नैया मेरी डोले है बीच भंवर में, तेरे बिन ये नैया मेरी डोले है बीच भंवर में, यसुआ यसुआ अब आ भी।